भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 और 24। नैनं चिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो अयमदायो अयमक्लेद्यो अयोषस्यैव च नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एकता रहने वाला है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। है ना, सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है यदि सूर्य में जीव नहीं रहते हो, मतलब सूर्य लोग में भी जीव रहते हैं। हमको अभी पता नहीं चल रहा है, अभी अभी हमको मार्स का पता चल रहा है। मार्स है मंगल, मंगल पे बोले पानी है। शास्त्र तो कई जमाने से बताते आ रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात पता की है, उसमें क्या रिसर्च किया है। ये तो ऑलरेडी लिखा है भगवत गीता में, सब जगह जीव है, सब जगह सब सब कुछ है। तो हम इसके पहले 22वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, 21वां श्लोक, वेदा विनाशनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम च पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। और फिर ये जो श्लोक है, यह श्लोक कौन से प्रश्न का उत्तर है? पहले अध्याय का 40वां श्लोक। 40वें श्लोक में अर्जुन कह रहे थे कि अहो गतम हत पाप, मतलब दो तीन श्लोक है वो लाइन थे। उस श्लोक में अर्जुन ने कहा था इतना सारा पाप मैं क्यों करूं, इतने लोगों को मारने की बात कर रहे हो, हत्या और मैं करूं क्यों करूं, इतना बड़ा पाप है। इन प्रश्नों के उत्तर भगवान ने हमने पहले देखा 21वें श्लोक में, और फिर इसी श्लोक में हमने देखा कि भगवान आत्मा का भी वर्णन कर रहे हैं। मरने मारने की बात की है, है ना, मरने मारने की बात की है भगवान ने, न तो ये मरता है न मारता है। तो भगवद गीता में मरने मारने की बात क्यों कही, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है, युद्ध के स्थल पे, युद्ध के जगह पे जहाँ युद्ध हो रहा है वहां भगवद गीता हुई है, इसलिए मरने मारने की बात हो रही है। भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन किसी के भी मृत्यु का कारण नहीं है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन कह रहे कि इनके सबके मृत्यु का कारण मैं क्यों बनूं, क्यों मैं ये सब पाप का भागीदार पार्टनर बनूं। आप ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, आप पाप के भागीदार बनेंगे। अर्जुन भगवान को उलट बोल रहे हैं, आप ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, ऐसी सलाह दे रहे हैं पाप की, आपको भी शेयर लेना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा बहुत पाप मिल जाएगा यदि मैं पाप करूंगा आपके कहने पे, है ना। तो यहाँ अर्जुन को फिर भगवान कह दे, अरे जब तुम पाप तुम करोगे ही नहीं तो मैं पाप का शेयर कैसा लूंगा। जब तुम्हारा कर्तव्य जो है, जो तुम कर्म करने जा रहे हो, वो पाप ही नहीं होगा तो फिर मैं कैसा पाप का भागीदार बनूंगा। तो भगवान कहते कि तुम जो है इन किसी के भी मृत्यु का कारण नहीं बनोगे, तुम केवल किस चीज का कारण बनोगे, नहीं इनके मृत्यु का कारण तुम नहीं बनोगे, क्योंकि आत्मा को न तो कोई मार सकता है, नहीं कुछ उसको जला सकता है, न सुखा सकता है, न बिगा सकता है। तो तुम होते कौन हो इनको मारने वाले, इनकी हत्या करने वाले, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम इनकी हत्या मृत्यु के कारण नहीं हो, तो तुम किसके, क्या किस चीज के तुम कारण हो, शरीर के बदलाव, तुम इनके शरीर को बदलने का कारण हो, तुम इनके शरीरों को बदल सकते हो, इनके शरीर बूढ़े हो चुके हैं और उनको दिव्य शरीर प्राप्त होने वाला है, उनको दिव्य शरीर प्राप्त होगा इसके कारण तुम बन सकते हो यदि चाहो तो। ये तो पुण्य का काम है, पाप का काम है क्या, पुण्य का काम है। तो इस प्रकार से हमने 22वें श्लोक में देखा, उसका सार ये था कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होती है इस संसार में तो मिटती है, नहीं जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही है, कोई भी वस्तु तो शरीर वस्तु ही है, उत्पन्न होता ही नष्ट होगा ही, क्योंकि शरीर ने जन्म लिया है, शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर का नाश होना अवश्य है, निश्चित है। परंतु आत्मा ने तो जन्म ही नहीं लिया, अजन्मा है न, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो अजन्मा, अब जिसने जन्म ही नहीं लिया वो मरेगा कैसे, उसका मृत्यु होगा कैसे, होगा क्या, जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कैसे होगा। आत्मा का जन्म होता नहीं है, जन्म किसका होता है, शरीर का जन्म। तो इसलिए ये देखा, फ्लैशबैक कर रहे थोड़ा सा आपको रिफ्रेश होने के लिए। फिर दूसरे अध्याय का फिर हमने देखा, वाता जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को परिधान करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को प्राप्त करता है, धारण करता है। शरीर की वस्त्र के साथ तुलना की है। इसके पहले हमने देखा 13वें श्लोक में, 13वें श्लोक में क्या था, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, शरीर में जो परिवर्तन होता है क्या होता है, कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, इस प्रकार से वहां पे शरीर का परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या बताया गया, शरीर के स्थिति में बदलाव होता है, वहां पे क्या बताया गया, शरीर में ही बदलाव होता है। इस श्लोक में क्या बताया गया, शरीर के स्थिति में बदलाव होता है, जिस स्थिति में शरीर है इस स्थिति से निकल जाता है। परिस्थिति में बदलाव होता है, वहां पर शरीर में ही बदलाव होता है, दूसरी परिस्थिति में चला जाता है पूरा शरीर। तो इस प्रकार से अवस्था प्राप्त करता है दूसरी। तो ये हमने देखा मृत्यु के समय नया देह निश्चित हो जाता है। कैसे हो जाता है उसकी चर्चा हुई थी, जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते उसी प्रकार पुराना शरीर वस्त्र के जैसा हम त्याग देते हैं और नया वस्त्र सिलाते हैं, है ना, नया वस्त्र पहनते हैं। तो नया वस्त्र कौन सा पहनते हैं, जो अच्छा लगता है वो पहनते हैं क्या? कर्म के हिसाब से हमको नया वस्त्र प्राप्त हो सकता है ना। व्हाट यू डिजर्व एंड डिजायर, जो हमारी इच्छा है और पात्रता है उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। मान लो मुझे बहुत 10,000 का सूट बूट पहनना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत डिजायर स्ट्रांग है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, वेरी स्ट्रांग डिजायर, पर 10,000 रुपीज 10,000 रुपए जेब में है ही नहीं, कैसे प्राप्त करेंगे? कर सकते हैं? तो मुझे क्या चाहिए, पात्रता भी चाहिए, क्वालिफिकेशन योग्यता भी चाहिए, मतलब 10,000 रुपीज जेब में चाहिए और इच्छा भी चाहिए। मान लो 10,000 रुपीज जेब में है लेकिन मुझे उस शरीर वो सूट नहीं चाहिए, सूट लेना ही नहीं है मुझे, तो क्या उपयोग, तो मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो इच्छा भी चाहिए और पात्रता भी चाहिए, भगवत धाम जाने की इच्छा भी चाहिए और पात्रता भी चाहिए, नहीं तो केवल बोले कि अंतकाल है माँ में बस आराम से पूर्ण जीवन भर ऐसा आराम करो और अंतकाल में स्थिति लगाओ कैसे लगाओ बाजू में सुनने के लिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ काम चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि संस्कार मन के ऊपर संस्कार नहीं हुआ है। पूरे वर्ष भर यदि कुछ भी नहीं पढ़े और अंतिम समय जब फाइनल एग्जाम आती है तब एग्जाम देने के लिए जाएंगे कुछ याद आएगा? हाँ शून्य मिलेगा, बहुत बड़ा जीरो बिग जीरो, कितना भी याद करने का प्रयास कीजिए अरे अभी कैसा होगा, फेल हो जाएगी, कुछ लाभ नहीं होने वाला, फेल ही होने वाला, क्योंकि पूरे वर्ष भर कुछ प्रैक्टिस ही नहीं की। प्रैक्टिस करना आवश्यक है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मनुष्य को प्रैक्टिस से पूर्णता आ जाती है भौतिक संसार। तो शरीर को हमको ट्रेनिंग देना पड़ता है, फिर पुराना शरीर इसी प्रकार से जीवात्मा त्याग देता है, फिर भगवान ने परमात्मा के रूप में अपना विस्तार किया और जीवात्मा के साथ रहते हैं और प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा हम क्या कर रहे हैं हम बोलेंगे, हम किसी ने तो हमको देखा नहीं, हमने चुपचाप से अपना पानी पूरी खा लिया है, बाहर क्या कहते हैं भ्रष्ट फूड खा लिया, कोई नहीं था चुपचाप से चाय पी लिया, आधा कप आधी कप चाय पी लिया एक बार, किसी ने नहीं देखा। और आप परमात्मा अंदर भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए, उससे कोई छुप सकते हो तो हृदय में डायरेक्ट बैठे हैं ना, उसको निकाल के तो बाहर नहीं रख सकते, तो हृदय में बैठे हुए हैं और साक्षी है हमारे प्रत्येक कर्म के प्रत्येक कार्यकलापों के, वो कौन है, साक्षी है। उनके पास सब कुछ अपना रिकॉर्ड पूरा है, उनसे कहां बच के जाएंगे हम। इसलिए हमेशा नित्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और उनका काम क्या है, रिकॉर्ड करना, बस क्या कर रहे हैं हम। वचन दिया है प्रभुपाद महाराज को जप करने का, जप कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, उसका ध्यान रख रहे, सब रिकॉर्ड कर रहे। तो इस प्रकार से परमात्मा हृदय में स्थित है और जीवात्मा का और हमारे कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखने लिखा जाता। तो इस प्रकार से हमने पिछले फिर विकसित चेत फिर चर्चा हुई थी कि अपने इच्छा से यदि कोई मृत्यु चाहता है, मान लो कोई होते हैं ऐसे विरले लोग जो अपनी इच्छा से शरीर बदल के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा भी होता है, होता है ना, वो कौन लोग होते हैं, योगी लोग कौन होते हैं, योगी, वो क्या करते हैं, ऐसा जाते हैं, बताए ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर क्या है, कपड़े सिलाने की प्रोसीजर क्या है, मन चाहे कपड़े सिलाने की प्रोसीजर क्या है, कैसे जाते हैं वो योगी लोग, बहुत बार जाते हैं कि दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, अपने सारे प्राणों को उस दिशा में अग्नि चक्र और ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं और इसी दिशा में दूसरे शरीर दूसरे कपड़े प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से दूसरा विधि क्या है, पहला तो वो विधि हो गया ध्यान मार्ग, बहुत भयंकर तपस्या करके अपने प्राणों को नियंत्रित करके ऊर्ध्व दिशा ऊपर की दिशा में प्राणों को एकत्रित करके ब्रह्म रंध्र से प्राण को त्याग देना याज्ञ चक्र से, ये तो एक प्रक्रिया होगी जो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमें पूजा, भगवान ने कहा है पूजा मार्ग, दूसरा विधि है पूजा मार्ग। पूजा कैसी, यान्ति देवव्रता देवान भगवान कह रहे कि जो जैसी पूजा करेगा वहां पहुंच जाएगा, जिसकी जिसको जो भजेगा उसके घर पे पहुंच जाएगा, भूतों को भजेगा तो भूतों के घर पे चला जाएगा, पितरों को भजेगा तो पितरों के घर पे चला जाएगा, देवों को भजेगा तो देवों के घर पे चला जाएगा, और मेरे को भजेगा तो बोलते मध्याजिनो अपिमाम तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा, मुझे भजे। तो फिर वायु को ऊपर लो, प्राणों को ऊपर लो, फिर योग साधना करो, फिर अग्नि चक्र में जाओ, ये सब करने की क्या आवश्यकता है, क्या करना है, सिंपल बात है कि नहीं, पूजा करना है भगवान की। तो भगवान कह रहे मध्या जी नो अपीमाम, उनमें मुझे प्राप्त कर लेता है तो वो पूजा करके, तो पूजा कैसी करना है, तो फिर आगे भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्या, मन मना हो मत भक्तो मध्याजी, फिर वहां पे आ दिया गया मध्याजी, याद है मध्याजी नो अपी माम, वहां पे मध्याजी मन मना हो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करो, मेरे में मन लगाओ, चिंतन करो, स्मरण करो, नाम लो, है ना। तो इस प्रकार से हम पूजा मार्ग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा मार्ग मतलब नित्य स्मरण। तो इस प्रकार से हमने पहले देखा है पशु पक्षियों का मनुष्य में क्या अंतर है, वो भी हमने देखा है। पशु पक्षी को उनको जो कपड़े प्राप्त होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते नहीं, पशु पक्षियों का जो शरीर प्राप्त होता है मतलब कपड़े, वासा से गिरनानी, तो उनको जो वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, बड़े अनकंफर्टेबल है, फट गए तो सी नहीं सकते है कि नहीं, हम सी सकते हमारा वस्त्र हॉस्पिटल में जाके। तो इस प्रकार से पूरा लास्ट समय जो दूसरे अध्याय का 21-22 श्लोक हुआ है याद रखिए अच्छी तरह से, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि सारे श्लोक सेम है, आप बोलेंगे एक ही एक बात बोल रहे थे, एक ही बात है सब, भगवान संस्कृत का एक विशेषता यह है जब कोई बात रिपीट होती है, यदि बहुत बार रिपीट होती तो उसका अर्थ यह कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात, संस्कृत में अति महत्वपूर्ण बातों को बहुत बार रिपीट किया गया, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत महत्व की बात। और यहां किसने रिपीट किया है, पहले तो संस्कृत में रिपीट है, भगवान ने रिपीट किया है, तो कितनी महत्व की बात होगी ये सोचिए। अब इस श्लोक में फिर क्या है, नैनम चिदंति शस्त्राणि, इसके पहले क्या होके गया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसके पहले के भी लगभग तीन श्लोक में वही बात, नष्ट नहीं होता अजो अपि शाश्वतोयम पुराण, अजो है अजन्मा है, इसमें भी वही है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। क्यों, कोई व्यक्ति एखादी बात 50 बार बोलता है इसका मतलब क्या नहीं पता, बोलने के लिए इतना बहुत महत्व की बात सुनो, बाकी सब भूल जाओ, ये ध्यान में रखो, इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां कहे गए हैं सारे संशय दूर करने के लिए, अर्जुन के जितने भी संशय अभी कुछ बच्चे कुछ संशय हो गए उन सारे संशय को भगवान दूर करने के लिए इस बात को बार बार। अब इस बार ये जो श्लोक भगवान कह रहे वो कैसे कह रहे पता है, ये श्लोक बोलते वक्त भगवान अर्जुन के बाणों की ओर इशारा कर रहे, जो बाण पीठ के ऊपर अभी तक तो उनसे बात कर रहे थे, अभी बाणों के ऊपर इशारा हाथ इशारा करके निर्देश करके ये श्लोक बोल रहे थे। ठीक है, नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, बाणों की ओर इशारा करे, भलाई तुम्हारे पास सारे शस्त्रास्त्र हैं, तुम्हारे पास सारे बाण हैं, सारे शस्त्र हैं। शस्त्र मतलब पृथ्वी तत्व है। नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, तुम्हारे पास अग्नि अस्त्र भी है, तुम्हारे सुनीर में रखा हुआ एक बाण है उसमें अग्नि है, अग्निस्त्र है उसमें। नयन अंकल तुम्हारे पास दूसरा एक बाण है जो वरुणास्त्र है, मेरे क्या मतलब बारिश वर्षा करने वाला है, वायु। भगवान यहां कह रहे कि पांचों तत्वों से सारे पांचों के पांचों तत्वों को एकत्रित करके यदि तुम आत्मा जीवात्मा के ऊपर आक्रमण करोगे तो भी ये नयनम छिदंती नयनम कुछ भी नहीं होता इसे। अर्जुन के पास जितने बाण थे उसमें सारे अस्त्र थे, अग्नि अस्त्र वरुण अस्त्र एक शस्त्र वायु का भी वो क्या कहते हैं तौर माता है ना वैसे चक्रावात, उसके पास एक ऐसा अर्जुन के पास शक्ति था बाण, वो छोड़ दिया तो चक्रावात आ जाएगा। आज है जय के पास सारे न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, सारे प्रकार के बॉम्ब हो गया अस्त्र शस्त्र हो गया आज इस संसार में, लेकिन चक्रावात वाला है क्या इसके पास? कोई देश में है कभी सुना उसे चक्रावात का नाम का कोई बॉम्ब बनाया कि दाल किसी चक्रावात हो जाता है? ये मंत्र शक्ति से ही पॉसिबल हो जाता है। तो भगवान यहां कह रहे कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मारने वाले हो इनको? हाँ, ये सारे शस्त्रास्त्र अपने पीठ के ऊपर लेके बैठे है और सोच रहे हो कि इनकी हत्या कर दोगे ऐसा? अरे इससे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, आत्मा नहीं मरने वाला। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयन्ति मारुतः। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे कि ऐसा गलत मत विचार करोगे तुम इनको मारोगे। पहले की बात फिर से बोल रहे कि तुम केवल इनके कपड़े चेंज करने का काम करो बस। ये पुराने हो गए कपड़े, ये बदल दो बस, टेलर का काम करना है आपको। तो इसमें नयनम छिदंती शस्त्राणी इसका अर्थ है शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, शस्त्र के द्वारा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब एक जीवात्मा है ना, इस शरीर में आत्मा है जीवात्मा है, यदि मैं चाहूं तो अभी कोई मेरे साथ बहुत अकेला बोर होता है कंटाला आता है बैठे हैं, चलो एक मैं ऑलरेडी एक जीवात्मा है इसको काटता हूँ, दो बना के बातचीत करता हूँ, काट के एक जीवात्मा को अंदर ही अंदर काट देते हैं या फिर एक शरीर बहुत क्षीण हो गया वृद्ध हो गया है, अभी क्या करते हैं वो जीवात्मा जो है उसको काटते हैं, आधे एक पार्ट को उसी शरीर में रह देते, एक पार्ट को दूसरे शरीर में डाल देते फ्रेश। इसका अर्थ ये नयनम छिदंती शस्त्राणि मतलब शस्त्र को लेके सब्जी के जैसा जीवात्मा को काट नहीं सकते, टुकड़े 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 से नहीं कर सकते, इनको पीसेस कर सकते हैं? यहां भगवान वो बात रिपीट रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर सकते। नयनम छिदंती शस्त्राणि, कभी आपने वो केचुआ देखा होगा अर्थवर्म, केचुआ उसको मारा बीच में से मार दिया, दो टुकड़े हो जाते हैं होते हैं ना, दो टुकड़े होते हैं और दोनों पार्ट हिलते हैं, दोनों चलने लगते हैं दोनों। तो क्या इसका अर्थ क्या है? आप कहेंगे ये क्या है, दो टुकड़े नहीं ना चिदन दिखाए गए तो छेद कर दिया उसको, दो टुकड़े हो गए जीवात्मा के, दो टुकड़े एक ये भी घूम रहा है वो, परंतु ऐसे नहीं होता है। जब उस केचुए की हत्या करते दो टुकड़े कर देते हैं तो उसका जो फ्रंट साइड है वो, जैसे कि पहले हमने देखा है जो आत्मा है वो जीवात्मा हृदय के क्षेत्र में स्थित होता है, हृदय के क्षेत्र में जीवात्मा स्थित होता है और हृदय का क्षेत्र ऊर्ध्व दिशा में, अधो में नहीं ऊर्ध्व, ऊपर की दिशा में हृदय का क्षेत्र है कि नहीं है। हार्ट का ऊपर ही है ना, पेट में है क्या, ऊपर है। हृदय के क्षेत्र, हृदय का क्षेत्र ऊर्ध्व दिशा में है, तो इसलिए जीवात्मा उसी क्षेत्र के आसपास में है। वो एग्जैक्टली कहाँ है वो आगे के श्लोकों में आएगा। तो उस जगह पे आत्मा है और उस आत्मा से चेतना सारे शरीर में फैलती है। नहीं, लाइट वहां पे लगाओ लेकिन प्रकाश पूरे हॉल में पड़ता है। लाइट तो इधर लगा हुआ है, उधर भी प्रकाश है। वैसे ही जीवात्मा हृदय के क्षेत्र में है, पर जीवात्मा से जो चेतना उत्पन्न होती है सारे शरीर में है। जब उस केचुए को मार दिया जाता है तो वो केचुए का जो दूसरा बैक साइड पार्ट है, वो बैक पार्ट थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उसमें चेतना रहती है ना। तो जब तक वो चेतना है कुछ क्षण के लिए, तब तक वो ऐसे 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 करता है, हिलता है, है? और जब वो चेतना भी उसमें से निकल जाती है तो डेड बॉडी। ऐसे ही वो फ्रंट पार्ट के साथ भी ऐसे ही होता है, थोड़ी देर बाद चेतना नम होती, कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी केस में आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, सब्जी के जैसा काट नहीं सकते, 10-12 आत्मा बना दो एक आत्मा के, ऐसा हो नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि कौन से नायम हंती न हन्यते न हन्यते, 19 में है, नायम हंती न हन्यते, ये टूटता नहीं मिटता नहीं, न हन्यते हन्य माने शरीर, 20 नंबर का श्लोक, न घातयन्ति हन्तिकम, 21 नंबर का श्लोक, और अभी ये 22 नंबर का श्लोक, कंटिन्यूअस बात एक ही चल रही है। इसलिए आप एक महीने से इस बात को सुन रहे हैं कम से कम। तो इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि आत्मा के नयनं छिदन्ति शस्त्राणि छिन्दति शस्त्राणि। फिर कभी कभी मायावादी क्या कहते हैं, एको अहम ब्रह्मस्याम, मतलब अर्थात एक ही परमेश्वर थे, उनका विभाजन होकर बहुत से जीवात्मा तैयार हो गए। जीव भगवान का अंश है, मायावाद फिलोसफी बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं, भाई एक भगवान थे, अब जीव तो भगवान का अंश है, तो ये भगवान है, इसमें का एक निकल गया, दूसरा निकल गया, कुछ नहीं निकल गया, सारे टुकड़े टुकड़े। मायावाद तत्व कहता है कि ये जीव भगवान से आता है, परमात्मा से आता है, और जैसे ही वो जीव आता है वो विभाजन होते 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 क्या हो जाता है, सब निराकार निर्विकार परब्रह्म, ऐसे कहते हैं, निराकार निर्विकार परब्रह्म। पर यहाँ भगवान क्लियरली क्या कह रहे हैं, एकदम भगवान कह रहे हैं, अर्जुन भी नहीं कह रहा है, कोई दूसरा भी नहीं कह रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नैनम चिदंति तिस्रानी, नैनम, इसका ना छेद हो सकता है, ना विभाजन हो सकता है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज है बस। ये तो श्लोक में क्लियर कहा है। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जीव अस्तित्व में क्यों आया यही पता नहीं। Why? जीव यहां जन्म क्यों लिया, किस लिए इस संसार में जीव आ गया, हाँ ये पता ही नहीं था ना, कहा पता था, पता ही नहीं था। लोग मायावादी लोगों को पता ही नहीं रहता इस बात का, मतलब कहने का अर्थ यह है उनको पता भी रहा तो समझ में नहीं आता है, और समझ में भी आया तो भूल जाते हैं। देखो कितने चांसेस है मायावादी बनने के, पहले तो पता नहीं रहता है, अब पता हो गया तो भूल जाते हैं। देखिए इसलिए बार बार अलर्ट किया जाता है कि ना तो भूलिए ना तो अज्ञान रखिए। यह अज्ञानता का लक्षण है। भगवान निर्विकार निराकार है, यह अज्ञानता का लक्षण है। तो हमको अज्ञानी नहीं बनना है। जीव भगवान से अलग कैसे हुआ, कैसे हुआ जीव भगवान से अलग? भगवान क्या है? भगवान भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, मतलब ये जो ऐश्वर्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, वैराग्य है, सौंदर्य है, सब कुछ जो कुछ सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट वो भगवान की पास है, बस दूसरा कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। पर जीवात्मा जब भगवान के संपर्क में रहता है, भगवत लोक में रहता है, भगवत धाम में, तब भगवान का इतना ऐश्वर्य देखता है तो कभी ही उसको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा मिल जाए थोड़ा ऐश्वर्य। नहीं, उधर भी भगवान के साथ ईर्ष्या करता है। बताइए, जहां तहां जाओ वहां ईर्ष्या मिलेगा आपको, कहीं पे भी जाइए ईर्ष्या है ही है। तो भगवान के साथ यदि कोई ईर्ष्या करता है तो भगवान को कहते ठीक है, नहीं मेरे साथ ईर्ष्या करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, ऐसा मत करो। पर जीव इच्छा करता है क्योंकि उसको थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है, तो भगवान क्या करते, क्योंकि इसकी इच्छा पूर्ण करना है इसलिए ऐसे सारे जीवों के लिए एक जगत ही बना दिया, विश्व बना दिया। जाओ भाई आप लोगों को ऐसा करना है, वहां जाके करके देखो एक्सपेरिमेंट, आप लोग सक्सेस हो गए तो मुझे फोन करके बताना। नहीं, यशस्वी हो जाएंगे आप, ऐश्वर्यशाली, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य सारे संसार में, सबसे ज्यादा ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य, सब यदि ये प्राप्त हो गया इधर आके तो मुझे अवश्य बताओ। और ये प्राप्त करने के चक्कर में भगवान से ईर्ष्या की है हमने, क्योंकि वो दूसरे भगवान तो हो नहीं सकते, और नीचे उतर गए। पर भगवान कौन है? परम पिता है, उनको हम पिता कहते हैं, परम पिता। तो इस प्रकार से वह मायावादियों को पता नहीं होने की वजह से वो क्या सोचते हैं, भगवान परमात्मा से आत्मा उत्पन्न हो गया, इसका अर्थ क्या है, परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए, भिन्न हो गए परमात्मा, फिर निर्विकार हो गए, निराकार हो गए, पता नहीं क्या क्या। निराकार का अर्थ क्या है? हम भी कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ भगवान है। यदि वो कोई एक भी चीज वो भगवान नहीं है तो फिर वो भगवान ही नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भगवान हो नहीं सकते, भगवान कुछ भी हो सकते, कुछ भी हो सकते। कोई लोग हमको पूछते कि भाई ऐसा भगवान ने क्यों किया, हमें भगवान ने कुछ भी किया, सिंपल आंसर है, भगवान ने हमको दुख की दीजिए ना, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने हमको इतना प्रताड़ित के क्या कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा पाप के क्या कर सकते, भगवान उनको भी भारतीय संविधान का कायदा लागू होता है। हाँ, इस बार कोई हमको कहे, हमने कहा इस बार पानी नहीं गिरा आपके एरिया में, बहुत सूखा है पूरा, क्या करोगे, पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेंट करो, होगा कुछ फायदा? तो क्या कर सकते हैं, भगवान है, भगवान को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं, इसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। इसलिए प्रेम से क्या करना चाहिए, समर्पित, भगवान आप कुछ भी करते हैं। करते हैं नहीं, भक्तों के साथ भी मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, भक्तों को भी कभी कभी शिक्षा करते हैं प्रेम के कारण, अभक्तों को भी करते रहते हैं, वो कुछ भी करते हैं। तो भगवान निराकार भी है, भगवान निराकार भी है, हम नहीं बोलते कि भगवान निराकार नहीं है, हम बोलते भगवान निराकार भी है। भगवान साकार ही है। पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? सबसे पहला बोलिए जोर से, आपको मालूम जोर से बोलिए, एक ही शब्द बोलिए शुरुआत का, बस आपने सही बोला है, एकदम सही बोला, बोलिए शास्त्र शीर्षा शास्त्र पा। भगवान को क्या कहा है? भगवान का वर्णन किया गया उसमें वो शास्त्र शीर्षा शास्त्र पा। शास्त्र शीर्षा मतलब वो ऐसे भगवान है जिनको हजारों शीर्षर है, शीर्षा शास्त्र पाठ शास्त्र उनको जो स्वयं पैर है, हजारों पैर उनको है। फिर आप कैसे कैसे ये वेदों का वाक्य है, फिर कैसे कह सकते निराकार है? चलो भगवान स्वयं अपने बारे में बोले वो भी मत नहीं मानते कुछ कुछ लोग, पर ये वेद कह रहे हैं। और यहाँ पे वो कहते कि एक अहम समस्या, जब हम एक से सब कुछ आया है वो निर्विकार निराकार, तो फिर ये शास्त्र बात क्या? हाँ, तो निर्विकार का अर्थ ये है कि भगवान का आकार ऐसा है। निर्विकार का अर्थ बहुत पक्का ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपको संसार में 99% लोग पूछेंगे, 1% कोई नास्ती होगा तो नहीं पूछेगा। निर्विकार द्वैत द्वैत तत्व सिद्धांत में निर्विकार की क्या व्याख्या है? निर्विकार मतलब भगवान का ऐसा आकार है जिसकी कोई मर्यादा नहीं, इसलिए उसको बोला गया निर्विकार। निराकार का निराकार मतलब भगवान का आकार ऐसा है, मतलब भगवान का रूप ऐसा है कि जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहा। अब जो अज्ञानी लोग हैं वो ये कहते कि निराकार मतलब जिसको ऐसे कैसे आकार में सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद है, तो ये अज्ञानता का लक्षण है। भगवान को बहुत सुंदर अधरम मधुरम नयनम मधुरम तक भटितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम आकार नहीं है बोलते, और उनका मधुर भी रूप है, उनका विराट रूप भी है, उनका सहस्त्र शीर्ष पुरुष रूप भी है, वो क्या नहीं है, वो ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है, वो निराकार भी है साकार भी है, ये सब कुछ भगवान कृष्ण से आता है। बस एक वाक्य में सब व्याख्या हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से ये जो लोग कहते हैं एको ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म बहुश्याम मतलब एक ही भगवान से विभाजन हो गए, अनेक 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 जीवात्मे उत्पन्न हो गए। इस वाक्य को भगवान स्वयं ने, भगवान स्वयं कहते हैं ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे टुकड़े होके नहीं बने हैं, मेरे अंश है, मेरे अंश है, मेरे से विस्तार हो गया अंश है। कोई पिता का कोई पुत्र है तो जो पुत्र हो जाता है तो पिता का हाइट कम हो जाता है क्या? वेट कम हो जाता है, हाइट कम हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उतने किलो का वजन कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो वैसे जीवात्मा परमात्मा परम पिता है, तो वो परम पिता से ही अंश है, परम पिता का ही अंश है। भगवान स्वयं कह रहे हैं ममे अंशो, ममे अंशो जीव लोके, जीव जो है मेरा अंश है, बस ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या कहा गया है? नयनम दहति पावक, अग्नि अस्त्र से भी मारा नहीं जाएगा, अग्नि भी छोड़ दोगे जलाओगे भी तो भी जलेगा ही नहीं। इसमें ऐसा कुछ एक मटेरियल है वो फायर प्रूफ है, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, और वेपन प्रूफ क्या आकाश प्रूफ ऐसा है कि नैनम ना ही इसको अग्नि से जलाया जा सकता नैनम जहां महाराज कुसु का तो अंतिम समय हुआ। महाराज कुसु अंतिम समय में एकदम तपस्या के लिए निकल गए और तपस्या के निकलते निकलते तप करते करते उन्होंने देह त्याग दिया और उनको फिर अग्नि संस्कार किया गया। अग्नि संस्कार किया तो सारे देवी देवता ऊपर आगे देखने के लिए महाराज कुसु तो सारे देवी देवता देखने लगे। जैसे उनका अग्नि संस्कार अग्नि से सुंदर दिव्य देव का रूप बाहर निकला मतलब अग्नि ने उस जीवात्मा को जलाया नहीं क्योंकि जीवात्मा जो बहुत बड़े भक्त होते हैं उनका जीवात्मा शरीर से अटैच नहीं होता है शरीर में लगा नहीं होता है परंतु फिर भी उन्होंने देवताओं ने जो देखा कि क्योंकि इनके शरीर को दहन किया गया है तो ये जीवात्मा जो है उसको देव स्वरूप प्राप्त हुआ। हमको समझने के लिए हम श्रीमद् भागवत में हमें देख सकते हैं कि अग्नि भी इसका तात्पर्य कि अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकता। इसलिए कभी गलती से भी कोई कुकिंग करते हुए चक्का लग गया कुछ भी ऐसे बहुत बार लगता है ना चक्का आरती करते करते कुकिंग करते करते तो तुरंत क्या करने का याद नये नाम सिद्धांति शस्त्राणी नये नाम धरती पाव आत्मा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है काम करो आगे है ना सेवा करो। तो इस प्रकार से चौथे चंद्र में है कि तुम्हारा भी कथा आप पढ़ सकते क्योंकि हम भागवत का कथा लेने को फिर है जीवात्मा नैनम क्लेदयन क्या बोलो जल जीवात्मा द्रव पदार्थों में या पानी में भिगाया भी नहीं जाता। आप सोचेंगे कि ठीक है पानी में डुबा दीजिए इसको समाधि जल समाधि अरे पानी में भी नहीं डूबता है अभी क्या करेंगे पानी में भी यह नहीं डूबता है। जलचर प्राणी देखिए जलचर प्राणी जल में गलते नहीं है क्योंकि उनमें जल तत्व अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि जल पानी में भी जल में भी जीव रहते हैं जल में भी जीव रहते हैं और जल में रह के भी वो गलते नहीं है गलते है क्या कोई ऐसा लगा अरे मछली का जीव वो डिसॉल्व हो गया उसमें वाटर में पानी पीने को गया तो एकदम पेट में से मच्छी मछली मार आ गई जीव डिसॉल्व होता है नहीं होता है क्योंकि जीव जो है पानी में इतने सारे रहते हैं। पर आप हम कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि पानी में कैसे जीव रहते हैं। पानी में जीव इसलिए रहते हैं कि प्रत्येक शरीर में पांच तत्व होते हैं पंच महाभूत पांच तत्व होते हैं जिस शरीर में जो तत्व ज्यादा प्रमाण में होता है उस तत्व में वो शरीर रहता है। जैसे जो जलचर प्राणी है उनमें जल तत्व बहुत ज्यादा है तो जल में रह सकते हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं हमारे अंदर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है बोन्स वगैरह मेटल बोन्स बहुत ज्यादा है मटेरियल इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हैं। हम जल में रहने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत से लोग अंदर अंडर क्या कहते हैं कुछ बनाया है शिप के जहाज कुछ बनाया जो पानी के अंदर रहता है पर उससे पानी के अंदर रहने से शरीर के ऊपर कुछ समय के पश्चात प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है जल तत्व नहीं है ज्यादा थोड़ा बहुत सब है थोड़े थोड़े पर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है ये बहुत ज्यादा है कि पृथ्वी में ट्रेन चलेगी और मंगल पे जाने की आवश्यकता नहीं इधर खोजने की आवश्यकता इधर ट्रेन पे रहना है पृथ्वी में प्रेम से रहो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। शांति से, प्रेम से, शांति से हरि नाम करो, संतुष्टि करो, इसी तत्व हमारे में बहुत ज्यादा है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, तो क्या बोली, सत्य वायु में विद्यते स्वर्गमस्य धर्मस्य जायतो महतो भया। इधर ही रह के थोड़ी बहुत भक्ति करो, सारे संकटों को दूर करेंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे, भगवान का नाम लो, इसी प्रकार से शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान आगे भगवत गीता में शांति मृत्यु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा नामस्मरण करने से आप इसी पृथ्वी पे ही आपको शांति मिल जाएगी। इधर उधर राके छोड़ो, ये करो वो करो, है क्यों सकता नहीं, शांति चाहिए और क्या चाहिए, शांति से सुख शांति का जीवन चाहिए तो इधर भी मिलता है, पृथ्वी तत्व भी है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही है, क्या है, ये अज्ञान। कौन सा अज्ञान, भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संबंध क्या है, ये अज्ञान। इसलिए भगवत गीता का फ्राइडे का क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जल तत्व जलचर प्राणी में होने की वजह से जल में रह सकते हैं, इसलिए शास्त्र हमेशा से कहते आ रहा है कि जल में भी जीवन है, वायु में भी जीवन है, सब जब जल में जीवन है तो वायु में भी होगा ना, नहीं है, डेंगू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, किधर से आ गया, वायु में से है, वायु में कोई सब लेते हैं, राक्षस डेमंस वायरल फीवर, तो केवल वायरल फीवर उसमें डेमंस है, बिग बिग डेमंस घुस जाते हैं अंदर, तो वायु में भी जीवन है, सूर्यलोक में भी जीवन है, क्योंकि उनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, सब जगह जीवन है, सब जगह जीव रह रहे हैं, उनको कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि क्यों रह रहे, क्योंकि ये लोग मार ही नहीं सकते जीव को, जीवात्मा को मार सकते हैं, अग्नि वायु जल आकाश कोई नहीं, इसलिए सब जगह सब जीव रह सकते हैं। तो फिर है न शोषयति मारुतः, अब यहां पे देखो न शोषयति मारुतः, मतलब वायु वायु से इसको सुखाया नहीं जा सकता, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, धो के बाहर डाल देते, हवा के कारण सूख जाते हैं, ऐसे कभी ऐसा है, चलो आत्मा को एक बार धो के बाहर सुखा देते हैं, सूख जाएगा सारी इंप्यूरिटी अनर्थ निवृत्ति। वायु से, वायु से अनर्थ निवृत्ति करेंगे, न सोच लेती मार तो नहीं, चलो इस तरह सब पाप करेंगे, हृदय में हृदय में प्रेम है कहते हैं, पर हृदय में प्रेम है, लेकिन हृदय में प्रेम के साथ साथ ईर्ष्या अनर्थ पोल्यूशन ये सब है, प्रेम बाद में है, सबसे लास्ट, ये सब निकलने के बाद प्रेम आना शुरू होता है हृदय, पहले ये सब अनर्थों को निकालना पड़ेगा, तो शॉर्टकट में हम इसको सुखा नहीं सकते, ड्राई नहीं करा सकते, तो ये वायु का इसके ऊपर, इसका अर्थ है कि वायु तत्व का जीवात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। एक गर्ग संहिता में एक उदाहरण, एक कथा है, हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, वो लोमश ऋषि का आश्रम था, लोमश ऋषि के आश्रम के पास जाके ये क्या करता था, उनको बड़ा डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्ब करता था, देखिए उस समय से ये बातें चलते आ रही हैं, आप नगर संकीर्तन करने जाओ 50 डिस्टर्बेंस, आप भी जब करने कहीं बैठ जाओ लोकल ट्रेन में माला लेके जा रहे तो लोग क्या कर रहे हैं, इधर सको इधर सको इधर बंद करो, सबसे ज्यादा प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में कहे हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस यदि किसी को लोग करते हैं संसार या माया देवी तो वो हरे कृष्ण वालों, कहीं पे भी जाओ किधर भी जाओ डिस्टर्बेंस एक तो तैयार हो ही जाता है, इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल साधन है, कलयुग को मारने का एकदम प्रभावशाली, अनर्थ को खत्म करने का, कलि के प्रभाव को मारने का एकदम प्रभावशाली साधन है, जब ये साधन को माया देवी देखती है ना तो वो एकदम क्रोधित हो जाएगी, अरे ये आ गया अभी, ये यहाँ क्यों आया, इसको किसने बुलाया यहाँ पे, भक्त को क्यों आ गया, बौखला जाती है और फिर वो उताड़ित करने का प्रयास करती है। इसलिए भक्त में चाहे कुछ भी हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सहन करना चाहिए और जब कंटिन्यू करना, सहन करना चाहिए कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड बी हैप्पी। कोई कुछ भी कहे उनको प्रेम से, कोई बहुत चिड़ के आपके ऊपर बात कर रहा है, क्रोध से बात कर रहा है, एकदम चिड़चिड़ करके एकदम ऐसा बात कर रहा है, उसकी तरह आप प्रेम से हंस लीजिए, हरे कृष्ण, बस हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी उसकी भी और हमारी भी सब, और नहीं तो देर इज नो डिफरेंस, हम भी उत्कर्ष का एक्सपांशन, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो ये उत्कच लोमच ऋषि के आश्रम के सामने उत्पात मचा रहा था उसमें हमें कोई अंतर नहीं है, वो उत्पात मचा रहा है, हम भी उसके सामने उत्पात मचा रहे, सारे संसार में उत्पात ही उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हमारे में और उनमें फर्क इतना ही कि हम प्रेम के पुजारी हैं, प्रत्येक बात को प्रेम से समझते, क्रोध से नहीं, कोई क्रोधित भी होता है तो उसका क्रोध शांत होने के लिए प्रेम से समझिए, हंसी है थोड़ा सा उसके तरफ देख के, इस संसार में सबसे रेयर बात क्या है, प्रेम का स्माइल, कोई प्रेम से हंसता नहीं, ईर्ष्या से एक हंसता ऐसे हाथ, बहुत से लोग हंसते, कोई बड़े बड़े कंपनी में जाओ तो जबरदस्ती लोग हंसते हैं वहां के वेलकम करने वाले, पर प्रेम से हृदय से, वो तो आर्टिफिशियल है, हृदय से स्माइल, स्मित हास्य, भगवान कृष्ण से गीत शुरू हुआ जो अर्जुन ने बहुत सारी बातें कही, हमने देखा है श्लोक में भगवान कृष्ण स्मित हास्य कर रहे हैं, मंद हास्य, भगवान की उस हास्य का पूरा वर्णन है, भगवान क्यों ऐसा स्मित हास्य, अर्जुन की एंग्जाइटी देखिए, अर्जुन कितना एंशियस हो गया है, कितना डिस्टर्ब है, क्या क्या बोल रहा है, कांप रहा है, भगवान स्मित हास्य, मैं शास्त्र के ऊपर भी बात बता रहा हूँ, अपनी ओर से बात नहीं बता रहा हूँ, इसलिए उत्पात नहीं मचाना चाहिए, नहीं तो हास्य करना चाहिए, उत्कच उत्पात मचा रहा, लोमश ऋषि जब आश्रम के बाहर आया देखा इतने सारे वृक्षों को इसने पाउडर बना दिया, भस्म कर दिया सारे वृक्षों को आश्रम के सामने, बड़े क्रोधित हो गए, तपस्या कर रहे थे तो सब के कारण उनको हिस्से हुआ, तो उन्होंने बड़े कहा कि ठीक है तुमको तुम्हारे शरीर के ऊपर बड़ा गर्व हो गया है, शारीरिक शक्ति के ऊपर यदि किसी को गर्व होता है तो तुरंत उसका हरण भगवान कर देते, किसी के रूप में तो इसको इतना गर्व हुआ भगवान वो मशरूषी ने तुरंत उनको शाप दे दिया, भस्म हो जाए, भस्म हो जाओगे, लेकिन भस्म का तो श्राप दिया लेकिन आत्मा तो मर नहीं सकता ना अच्छा करेंगे, तो लोमश ऋषि सोचे ठीक है इसका कपड़ा बदल देते हैं उनको उन्होंने दे दिया, जाओ तुमको शरीर के ऊपर इतना अहंकार हो गया, गर्व हो गया है, जाओ तुम वायु का शरीर प्राप्त करो, तुम केवल वायु रहोगे, नो बॉडी, कैसा अहंकार करोगे, शाप दे, श्राप के पश्चात वो बहुत पश्चात पछताने लगा उत्कच, तो लोमश ऋषि ने बोला ऋषि जो होते हैं भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेम भी करते हैं, बोले दयालु होते दिवेर दया, वो बोले ठीक है अभी तुम वायु तो हो जाओगे, वायु का तो शरीर तुमको प्राप्त हो जाएगा, परंतु भगवान स्वयं तुमको इससे मुक्ति दिलवा देगा, तब जाके बहुत शांत हुआ। फिर आगे हम देखते हैं दशम स्कंद में शक्तासुर, वही शक्तासुर बन के आया, शक्तासुर मतलब वो वायु वो शकट में घुस गया है ना, सब जानते हैं भागवत कथा, उस शकट में वायु घुस गया और उस शकट को हिलाने लग गया और अपना अपनी शक्ति दिखाने लगा, अपना स्वयं का तो बॉडी नहीं था, शकट का ही बॉडी ले लिया अपना शरीर नहीं है तो शकट के शरीर में प्रवेश कर गया और भगवान को मारने का प्रयास किया, भगवान सब जानते हैं, भगवान जान ही जानते, भगवान जान गए। भगवान ने क्या किया कौन कौन बता सकता है? भगवान ने क्या किया, कैसे मारा उसको, लात मारा, और प्रिसाइज भी बताइए, लात का अंगूठा, पैर का अंगूठा जस्ट टच कर दिया, पैर के अंगूठे से स्पर्श कर दिया। देखिए भगवान के पैर के अंगूठे की कितनी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है पैर के अंगूठे में। पैर के अंगूठे से इतने बड़े राक्षस को स्पर्श के वो खत्म हो मर गया, केवल अंगूठे के स्पर्श। और लोग कहते हो निराकार, एक बार इनको जब स्पर्श करेंगे तो ऐसे शक्तासुर को किया, जो कोई भगवान को निराकार बोलेगा वो शक्तासुर को जैसे क्या वैसा भगवान करेंगे, निराकार। तो इस प्रकार से शक्तासुर का कल्याण हो गया, मुक्त हो गया। पर कहने का तात्पर्य कि वायु भी आत्मा को मार नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। भगवान के हाथ के उंगली का क्या विशेषता है, पैर के अंगूठे का और हाथ के करण बहुत लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी दर्जन, इसको इससे भगवान की उंगलियों में इतनी इतनी शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड को अपने उंगलियों के नचा सकते हैं। तो इस प्रकार से शकटासुर मतलब वायु नयनम शोषयति, मारू कहा ना, इसमें प्रभुपाद जी ने एक श्लोक भी लिखा है तात्पर्य में, अस्त्र घाते नाही काटे चिन्मय शरीर, अस्त्र चेतन से काम कर, अस्त्र घाते नाही काटे चिन्मय शरीर, तो बंगाली कितनी आसान है, अस्त्र अस्त्र घाते नाही काटे चिन्मय शरीर, अस्त्र घात अस्त्र का घात करने से नाही काटे कटता नहीं क्या चिन्मय शरीर, अस्त्र शस्त्र से चिन्मय शरीर काटा नहीं जाता। अब क्यों नहीं काटा जाता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, केवल एक सेंटेंस में उत्तर दीजिए, चिन्मय है, चिन्मय क्यों है, हाँ भगवान का अंश, सिंपल बात एक ध्यान में रखना है, ये सब बातें जीव के साथ क्यों नहीं होती, क्योंकि भगवान का अंश। आप सोचिए हमारे अंदर भगवान का अंश है, और सबसे बड़ी बात हम ये जानते हैं, आपको पता है दुनिया का सातवां सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सारे वो आश्चर्य ना ताजमहल का आश्चर्य है, क्या क्या आश्चर्य है, आईफिल टावर, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर एट वंडर्स नॉट सेवन, आठवां वंडर आठवां आश्चर्य क्या है, वो आश्चर्य क्या है, हाँ पर लगभग वैसे
सबको
वही जिस दिन में यमराज को यक्ष प्रश्न, ये सबसे बड़ा आठवां आश्चर्य लिखना चाहिए उसमें जो रिकॉर्ड होते हैं, आठवां एट वंडर, एट वंडर ये है कि मनुष्य यह जानते हुए भी क्या जानते हुए नहीं, अभी हमने सोचा मैं भगवान का यह जानते हुए भी इसको भूल जाता है, और क्या सोचता है ये भी भूल जाता है ये भी भूल जाता है कि नहीं, आठवां वंडर भूल जाते हैं ना, कि 24 घंटे में कितनी बार हमको ये याद आता है कि ये मैं भगवान का अंश हूं, कितने सेकंड के लिए, तुम्हें कम से कम कुछ सेकंड, मैं भगवान का अंश हूं, या परमात्मा जीव के साथ अंदर ही है, भगवान बैठे हुए है देख रहे हैं, ये स्मरण नहीं रहता है इसलिए तो अज्ञान बढ़ रहा है,
अज्ञान का दूसरा दूसरा कारण कुछ भी नहीं, केवल एक ही बात हम भूल गए, एक ही बात बार बार भूलते हैं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, इस बात को जो कि भूलने योग्य भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान का अंश है और ये अंश ही रहता है। भगवान कभी बनता नहीं, भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लग जाएगी, क्या भगवान बना चाहे ऐसा मार्ग वाला भगवान। सब जगह भगवान बनने का होड़ मचा हुआ है और भगवान को भक्त बनने में इंटरेस्ट है। भगवान भक्त का रूप लेके चैतन्य के रूप में आ गए, भगवान भक्त का रूप, और मनुष्य को भगवान बनने का कॉम्पिटिशन है। हम भगवान बन भी गए तो क्या लाभ है, वो तो भक्त बने बैठे। भगवान तो भक्त बने, हम भगवान भी बन गए तो क्या लाभ है, भगवान जो ओरिजिनल है वो तो भक्त के रूप में आ गए। तो इसलिए हम हमेशा भगवान का अंश ही रहे। जैसे तात्पर्य होता है, चिंगारी होती है, अग्नि होता है फायर, अग्नि की चिंगारी होती है ना, चिंगारी वो क्या कहते हैं, चिंगारी कहते हैं ना, एक चिंगारी होती है, वो इतनी सी होती है, लेकिन उसमें वो अग्नि की सारी क्वालिटी होती है ना कि नहीं होती है, होती है ना, अग्नि की वही क्वालिटी उस चिंगारी में है, परंतु केवल फर्क क्या है, वो छोटी है। वो जब तक अग्नि में है ठीक है, अग्नि से जब अलग हो जाती है और दूर जाती है अग्नि से तो खत्म हो जाती है। परंतु यदि ये अग्नि की चिंगारी निकल गई अग्नि से और जैसे ही निकली उधर सूखा घास पड़ा हुआ बहुत, तो क्या होगा, उसमें गिर जाएगी और क्या होगा, फिर अग्नि प्रज्वलित होगा, उससे अनेक अनेक आग अनेक दूर तक वो आग फैलती जाएगी। इसका अर्थ यह कि ये जीवात्मा ऐसे जगह आके गिर गया है, मतलब ये अग्नि आत्मा रूपी चिंगारी ऐसे शरीर रूपी घास में आके गिर गई है, ये बूझेगी नहीं, शरीर रूपी घास में आ गई, बूझेगी नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये भूलेगी नहीं कि वो भगवान कृष्ण का मतलब भगवान का अंश है, वो तो भूलेगी नहीं, क्योंकि यह जाए ऐसी जगह पे आके गिर गई जो अनुकूल है, यह जो शरीर है यह अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, प्रतिकूल बाकी सारी योनियां प्रतिकूल है, यह शरीर अनुकूल है। तो इसलिए इस शरीर का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा अब्यूज नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए, डोंट मिस यूज और अब्यूज, शरीर को यूज कीजिए, बेस्ट लेवल पे यूज कीजिए शरीर को। फिर आगे के श्लोक में क्या है, अच्छेद्यो अहमदायो अयम क्लेद्यो अशोष्यो एवच नित्य सर्वगत सानुश्च सानुश्च लो अयम सनातनम्। सानु अश्चल अयम सनातन, ऐसा यह आत्मा खंडित तथा अघूलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एकता रहने वाला है। कुछ नई बात है इसमें, वही बात फिर नहीं, तीसरे श्लोक तक लगभग वही बात है, कितना अर्जेंट है, इमरजेंसी है, डेस्परेट है, मतलब क्या कहते हैं, मरण प्राय जरूरत है इसकी, हमको नितांत जरूरत, एक बार ऑक्सीजन नहीं मिला तो चलेगा, थोड़ी देर इतनी जरूरत है। फिर वही बात, इसमें भगवान कारण बता रहे, जैसे हमने एक वाक्य में कारण समझा कि हम भगवान के अंश है इसलिए चिन्मय है, इसलिए इसको मिटाया नहीं जा सकता है वगैरह वगैरह, इसमें भगवान विस्तार से बता रहे हैं कि क्यों इसको मिटाया नहीं जा सकता, क्यों इसको मारा नहीं जा सकता। तो इसमें कहा गया है अच्छो जो अयम। अभी देखिए इसके पहले के श्लोक में भी हमने ऐसे ही कुछ लगभग देखा, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमान। अब इस श्लोक में भी चार निषेध है, सेम टू सेम निषेध वही निषेध है। क्या निषेध है? छेदन नहीं कर सकते, शस्त्रों से छेदन नहीं कर सकते, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो चार निषेध इस श्लोक में दिए हैं वो क्या क्या है? वो इसके नैनम छिदन्ति छेदन नहीं किया जा सकता, खाने जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता, तो ये सेम है। इसमें यह चार निषेध के तौर पे है और फिर चार विशेषता। इसके पहले कहा देखिए हमने चार निषेध चार विशेषता गई ना पहले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। अब फिर चार निषेध चार विशेष इस श्लोक, पांच विशेषता है शायद इस श्लोक में। तो चार निषेध में पहला निषेध वही है कि शस्त्र से छेदन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई ये कह सकता है कि भाई शस्त्रों का अभाव ही है तो क्या करेगा, शस्त्र ही नहीं है तो क्या छेदन करेगा? शस्त्र का तो अभाव नहीं, शस्त्र तो बहुत है, लेकिन मतलब कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई उस आत्मा को जो मारने वाला एग्जैक्ट शस्त्र है ना, वो शस्त्र का अभाव, वो शस्त्र नहीं है। उधर वो स्वर्ग लोग सत्य लोग में कहीं तो जो शस्त्र रखा हुआ है वो मिल जाएगा तो आत्मा उसको छेदन कर, ये कारण है। वो ये कह सकता है शस्त्र का शॉर्टेज है इसलिए आत्मा को छेदन, पर यह भी कारण है। इसलिए भगवान और क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा मत सोचिए कि शस्त्र अवेलेबल नहीं है इसलिए छेदन नहीं कर सकते। बार बार भगवान बोल रहे ना, प्रत्येक बार भगवान कुछ ना कुछ और आगे का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि शस्त्र उधर कोई लोक में रखा हुआ है छुपा के भगवान ने, और वो यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे आत्माओं को छेदन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर कभी कभी शस्त्र तो है पर चलाने का स्किल नहीं है, चला नहीं सकते, ऐसा कुछ है। एक ही आप एक ही है, वो देव फलाना ठिकाना देव है, कोई वो शस्त्र चला सकता है? ऐसा कुछ है कि ये वो व्यक्ति चला सकता है? देखिए शस्त्र भी है और चलाने वाला व्यक्ति भी है, फिर भी ये नहीं कर सकता। जैसे कि अर्जुन, अर्जुन चला भी सकता है और अर्जुन के पास शस्त्र भी है, इसलिए भगवान यहां बोल रहे हैं कि भलाई तुम चला भी सकते हो और तुम्हारे पास शस्त्र भी है पर फिर भी तुम आत्मा को नहीं, फिर भी तुम इनकी हत्या नहीं कर, तुम क्या बोल रहे हो? महत पाप हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम कर ही नहीं कुछ सकते। यहां कह रहे कि ऐसा मत सोचो क्योंकि शस्त्र नहीं है, या शस्त्र भी है तुम भी हो सब कुछ है पर तुम नहीं कर सकते, उसको मार ही नहीं सकते ना, श्राप से मार सकते, श्राप से भी जीवात्मा खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार से कोई कहेगा कि किसी को श्राप दिया तो पत्थर बना दिया, कभी हमने देखा है श्राप देने से पत्थर बना दिया? लेकिन भगवान का एक रूप है ब्रह्म रूप, चराचर सर्वव्यापी रूप, भगवान पत्थर में भी है, मतलब भगवान का अंश पत्थर में भी है। तो इस प्रकार से यहां हम देख सकते छेदा शस्त्रास्त्र से छेदा नहीं जा सकता, किसी से भी छेदा नहीं जा सकता, चाहे आपके पास कितने भी अच्छे शस्त्रास्त्र क्यों नहीं। अब देखिए कई बार ये उदाहरण देते हैं पर कहां तक योग्य है मुझे पता नहीं है, पर मैंने कई बार इस उदाहरण को सुना है भक्तों से, राहु और केतु का उदाहरण देते हैं। अब कोई कहते कि उनको गर्दन से कहिए, कोई कहते यहां से ऊपर तक मार दिया, भगवान ने शस्त्र चला दिया चक्र तो दो पार्ट हो गए, है कि नहीं। भगवान ने सुदर्शन चला दिया तो राहुल केतु आफ आफ हो गए जिसते जिसते, लेकिन फिर भी वो जीवित है। राहुल केतु देव के रूप में है, मतलब देव के पीछे पड़े रहते हैं, पर जीवित है। दूषित ग्रह है मतलब पापी है परंतु जीवित है। वो क्यों जीवित रहे? क्योंकि जब तक भगवान शस्त्र चला था तब तक उन्होंने अमृत पी लिया था और अमृत यहां तक आ गया। अमृत यहां तक तो आ गया लेकिन भगवान को बड़ा क्रोध आ गया, वो चक्र चलाने के पहले गुस्सा मार दिया उनको। चक्र चलाने के पहले गुस्सा लगा दिया। एक देव बाजू में जो सूर्य और चंद्र बैठे थे, चक्र के पहले उन्होंने सनातन गुस्से मार दिए। तो जैसे गुस्सा मार दिए तो जो अमृत वो पी गए थे वहां गिर गया। किसी को मारो तो उल्टी हो जाती, इतना मार दिया तो ऐसा अमृत नीचे गिर गया और कुछ लोग गिर गया, राक्षसों के मुख में का अमृत कहां गिर गया? पृथ्वी पर गिर गया। अब अमृत है ऐसा खाली तो बैठेगा नहीं ना, अपना असर दिखाएगा। और पृथ्वी पे गिर गया और उसने फिर पृथ्वी के ऊपर आने की वजह से एक रूप ले लिया, प्याज और लहसुन, कांदा और लहसुन, वो जो उनके मुख में से राक्षस थे मुख में से जो उल्टी किए अमृत की और पृथ्वी पे आ गया और उसी से कांदा और लहसुन की उत्पत्ति हो गई, प्याज और लहसुन। और हम लोग में कुछ लोग जो भी खाते हैं जो भी खाते बोलते, कोई हमको मिले कुछ दिन पहले वो हमको बोले कि कांदा और लहसुन नहीं खाते हैं इसलिए लोग वीक हो जाते। मैं बोला आप स्वयं कांदा लहसुन खाते हो तो आपको डायबिटीज क्यों हो गया? उनको है डायबिटीज। तो कहने का अर्थ यह है कि कांदा और लहसुन व्यक्ति के बौद्धिक मतलब इसको क्या कहते हैं, विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विचार करने की शक्ति और स्मृति, मेमोरी, मेमोरी और इंटेलिजेंस, स्मृति और बुद्धि दोनों को भ्रष्ट करती है। इसलिए पायलट लोगों को प्लेन चलाने के 48 आवर्स पहले लहसुन खाना अलाउड नहीं रहता, यदि उसका टेस्ट होता है इसने लहसुन खा के आया होगा तो ही इज नॉट अलाउड टू फ्लाई बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। क्या होगा? वो राक्षसों के मुख में से आ गया, हम भले ही अमृत क्यों ना हो राक्षस के मुख से आ गया झूठा उसका और हम उसको खाएंगे। इसलिए भ्रष्ट फूड नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड में कांदा रहता है, लहसुन रहता है, जो खाएगा वो राहु केतु बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रकार से क्या है ये शस्त्र से विच्छेद नहीं कर सकते हैं, मंत्र से श्राप से भी आत्मा के टुकड़े नहीं कर। कोई ऋषि ने कभी आपने सुना हे राक्षस तुम उत्पात मचा रहे हो, ये लो मैं आत्मा को श्राप देता हूँ कि वो टुकड़े हो जाए? नहीं, हमेशा शरीर को श्राप देकर बोलते अभी दूसरा कर प्राप्त, जिसमें तुमको पनिशमेंट होगी वो शरीर प्राप्त कर जाओ, दूसरे कपड़े पहन के आओ फटे पुराने, है ना? इस प्रकार से कोई आत्मा को श्राप देती है सुना, इसका अर्थ श्राप से भी इनको नहीं मारा जा सकता है, फिर जल जलाया नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है मतलब कोई यह सोचे ठीक है नॉर्मल कंडीशन में नहीं जलाया जा सकता है कि नहीं, साधारण स्थिति में जलाया नहीं जा सकता है, तो कुछ विशेष कार्यकलाप करके थोड़ा कुछ आइडिया करके कुछ केमिकल वगैरह बना के केमिकल दो तीन केमिकल एकत्रित करके बढ़िया। दुर्योधन ने कैसे आइडिया किया थोड़े, उनके लिए बहुत बड़ा घर बना दिया पहले लाक्षा दुर्गा, इतना सुंदर और बेस्ट बन गया। पांडव भी बड़े खुश हो गए, इतना सुंदर लाक्षा गुरु किस चीज से बनाया? लाक्षा गुरु लाख से बनाया, लाख लाख की विशेषता क्या, गुण क्या है? लाख इनफ्लेमेबल, जलनशील है, जरा भी आग का कुछ हो गया पूरा भड़क जाता है, पूरा समझ गया जलनशील। धन्य ऐसे आइडिया थे, विशेष विधि बनाया के अनुसार उसको बढ़िया लाक्षाग्रह बनाया और जला दिया। कोई ये सोचे कि आत्मा के लिए भी ऐसी कुछ विधि में बनाता हूं, कोई केमिकल दो चार बड़े हाई क्लास के केमिकल न्यूक्लियर पावर वाले या कुछ भी कोई भी ऐसे केमिकल बना के इस आत्मा के ऊपर चलाता हूं। भगवान कह रहे वो भी आइडिया नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलेगी, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा को न तो जलाया जा सकता। अयम क्लेद्यो, अनेक प्रकार के द्रवों से भी इसको भुला नहीं जाता, इसको डिजॉल्व नहीं की कर सकते, है ना। पानी में डाल दिया मट्टी या नमक पानी में डाला तो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता, भूल जाता है। इसी प्रकार से आत्मा को भी कोई ऐसा तो केमिकल होगा उसमें डाल दिया तो भूल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं। कोई भी केमिकल ऐसा संसार में, जैसे गंधक के कांटेक्ट में कोई एक गंधक के गंधक के साथ कोई एक केमिकल रहता है उसमें भूल गया, गंधक होता है गंधक के साथ कुछ एक केमिकल है वो, उसको मिला दो जो लिक्विड तैयार होता है उसमें संसार का कोई भी आइटम डालो वो डिजॉल्व हो जाए। गोल्ड भी का एक क्या है भूल गया होता है ना, हाँ ऐसा कुछ तो है याद नहीं मिल रहा। बॉडी तो होता ही सब एवरीथिंग डिजॉल्व होता है लेकिन आत्मा नहीं। तो हम ये भी सोच सकते कि जैसा ये सब सारी चीजें डिजॉल्व करने के लिए इतना दिमाग लगाया, इतना साइंटिफिक वर्ल्ड इतनी डेवलप हो गई है, इतनी वर्ल्ड क्लास की हो गई है, ऐसा कुछ करके इसको भी डिजॉल्व करने का आइडिया निकाले तो पॉपुलेशन कम हो जाए। पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर अशोष्य मतलब सुखाया नहीं था, किसी भी परिस्थिति में इवन प्रलय काल में भी। प्रलय आता है, अनेक प्रकार से प्रलय आता है, जब विध्वंस होता है तो अनेक प्रकार के प्रलय होते हैं, कभी वर्षा बहुत होती है तो कभी कुछ भी नहीं। तो प्रलय काल में जब सूखे का प्रलय होता है तो 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, कितने वर्ष 100 ईयर्स तक बारिश नहीं गिरती। और जब सूर्य का जो तापमान का जो ताप होता है वो 12 गुना ज्यादा होता है, 12 गुना सूर्य का ताप ज्यादा होता है, वो इतना ताप होता है कि समुद्र भी सूखने लगता है, और इतना सब कुछ सूख जाता है लेकिन फिर भी आत्मा नहीं सूखता, जीवात्मा नहीं सूख सकता। आप सोचिए प्रलय के समय तक देखते हैं, प्रलय के टाइम पे ऑटोमेटिक सूख जाएगा, नहीं सूख, उस समय भी वह सूखता नहीं। इसलिए भगवान इतनी बातें अर्जुन को बताते, अरे क्यों सोच रहे वो मर जाएंगे, वो मिट जाएगा आत्मा, नहीं होगा। जब इतनी सारी बातें इनको नहीं मार सकता है तू क्या मारेगा, चलो युद्ध करो, कम से कम धर्म कर्म अपना जो कर्म है ड्यूटी है धर्म के रास्ते पे चलो, अधर्म का नाश, चलो युद्ध करो। फिर 5 विशेषता है, सब हो गया ना, अभी 5 विशेषता है, ये हो गए 5 निषेध, 4 निषेध, 5 विशेषता। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, वो नहीं है, दूसरी क्या है, नित्य सर्वगत स्थान अश्चलमय सनातन, वही है अजो नित्यम शाश्वत, नित्य है, दिवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदात, नित्य जीव क्या है, नित्य क्या है, नित्य है जीव, नित्य है शरीर, अनित्य बोल तो अनित्य बोला इधर से, शरीर अनित्य है जीव नित्य है, तो यहाँ पे भगवान फिर दोहरा रहे पांच विशेषता, पहले भी चार विशेषता बताई, वही चार विशेषता फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं। नित्य है, अब यहाँ बताने का अर्थ यह है कि नित्य तो है, अभी फिर एक बार बोल रहा हूँ, नित्य तो है, पर नित्य होके भी इसका गुणधर्म क्या है? वो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, वो क्या है? दिवेर स्वरूप है, वो नित्य है, पर नित्य कैसा है? दास के रूप में है। पहले केवल पहले के श्लोक में क्या, अजो नित्यम शाश्वत, अभी नित्य दास। यहां थोड़ा इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि यह वर्णन चैतन्य चरितामृत में, नित्य दास है, नित्य मालिक नहीं है। शरीर कितने भी बार मालिक बनने का प्रयास करने दीजिए, शरीर तो हमेशा मालिक ही बनने का प्रयास करता है। शरीर तो नित्य ओनर, दास बनना चाहता है कोई? कोई दास नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं, बॉस बॉसानु बॉसानु बॉस बॉसों के बॉसों का बॉस बनना चाहते, दासों के दास नहीं बनना चाहते। शरीर तो बॉस बनना चाहता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? नित्य स्वरूप है, टेम्पररी नहीं, इटर्नल, नित्य है और नित्य दास। फिर यहाँ पे दूसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वगत। रूपा जी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण होता है, सर्वगत, यह सर्वत्र है। सर्वत्र है का अर्थ क्या है? यह है चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की पूरी भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक में ही बता दी तो हम थोड़ा बहुत इधर से उधर भी कनेक्शन देखते हैं, तो वो भगवान ने यही बात, भगवान ने वो बात वहां कितनी आसान बात बताई। तो यहाँ बस जैसे सर्वत्र है, मतलब चराचर है, चराचर सर्वगत, लेकिन चैतन्य चरितामृत में थोड़ा वर्णन ऐसा है कि इसका अर्थ ये तो है ही है, पर और आगे उसका अर्थ ये होता है कि वो सारे शरीरों में भ्रमण करते 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 इधर आ गया। इसका अर्थ सर्वत्र मतलब ये, सारे शरीरों को प्राप्त करते 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 मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। कहीं पे भी हो, किधर भी गए तो उधर भी शरीर नहीं दिख रहा है। चेतना कैसे आई? केवल चेतना कहां से? पर लाइट ही नहीं रहेगा तो लाइट कहां से? बल्ब नहीं रहेगा तो? वो तो है ना, कोई भी शरीर प्राप्त करेगा तो पहले आत्मा को वहां जाना ही पड़ेगा कॉन्शियस होने के लिए। बिना कॉन्शियसनेस, जैसे कि कॉन्शियसनेस है, जैसे हमने भी केचुए का उदाहरण लिया, उसमें वो सेकंड पार्ट है, बैक साइड है केचुए का, दो पार्ट कर दिया, जो बैक पार्ट है उसमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन बराबर एकदम सही, वही तो कहा है, आत्मा है इसीलिए तो सारी प्रॉपर्टीज है ना, और आत्मा है इसलिए सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आत्मा की क्या प्रॉपर्टी है? आत्मा है, आत्मा की अजो नित्य सब सब प्रॉपर्टी, इसलिए बॉडी के ऊपर मतलब मरता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब आत्मा की प्रॉपर्टी है, उसकी कॉन्शियसनेस है, और शरीर में पूरा हाँ ऑक्यूपाइड है, जो स्पिरिट हुई है, लेकिन आत्मा की क्या क्वालिटी है? वो क्यों है? वो आत्मा की क्वालिटी क्यों है? क्या है, हो गया है, क्यों है? अंश, भगवान का अंश है। अब ये भी पता चलेगा कि भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है, उसकी ये क्वालिटी है, उसकी ये गुण है ना, वो गुण है जो कि भगवान के गुण है, पूर्ण रूप में है उनके पास, वो पूर्ण रूप में है, इधर एक अंश के रूप में, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये गुण है मेरे में, लेकिन ये गुण स्वभाव में कैसे बदलते हैं? ये गुण जब स्वभाव में बदलना, उसी को कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता। ये गुण का विशेष स्वभाव, इन सारे गुणों का विशेष स्वभाव है दास होना। मतलब जब हम दास हो जाते हैं तभी यह गुणों का रियलाइजेशन, बॉस होंगे तो यह गुणों का रियलाइजेशन नहीं होगा कि आत्मा अनंत है, आत्मा नित्य है, मैं आत्मा हूं, भगवान मेरे साथ क्या रिलेशन है। जब तक बॉस रहेंगे तब तक इनका रियलाइजेशन नहीं होगा, दास होने से इनका रियलाइजेशन, दास नहीं होगा तो नहीं आएगी। दास होगा तो क्वालिटी समझ में आएगी, क्वालिटी समझ में आई तो अनुभूति अनुभव करेगा, अनुभव करेगा तो भगवत धाम जाएगा, नहीं दूसरा कपड़ा सिलाने की आवश्यकता नहीं। द रूट कॉज, द मेन बात यह है कि भगवान का अंश आत्मा है, उसका स्वरूप भगवान नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण। भगवान का अंश आत्मा है लेकिन आत्मा भगवान नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का सेवक है, आत्मा भगवान की सेवा में लगता है, आत्मा भगवान की सेवा करता है। इस शॉर्ट बात में कैसे करता है ये पूरा विस्तारित रूप है कि भगवान का अंश आत्मा, आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा में भगवान की सारी क्वालिटी अंश रूप में ही है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, यह क्वालिटी आत्मा में है। इनको शस्त्रास्त्रों से, अग्नि से, वायु से, पंच तत्वों से मारा नहीं जा सकता है अंश को, तो क्या भगवान को मारा जा सकता है? उनके अंश को ही नहीं मारा जा सकता है तो भगवान को मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि क्या भगवान कृष्ण को किसी शिकारी ने बाण मार के मार दिया? क्या भगवान राम मर गए? कोई भी भगवान मर गए ऐसा है? भगवान स्वयं बोले ऐसा नहीं। तो मुख्य बात यह है कि इस प्रकार से जो जीवात्मा अंश रूप में भगवान की क्वालिटी लेके नीचे आ गया है, यहां आके वहां पे जो काम वो कर रहा था वही काम यहां से कर रहा, जहां से वो आत्मा आया ओरिजिनल जगह से, वहां वो क्या कर रहा था? अब यहां आके क्या करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कृष्णदास क्या है? सदा बिंदास, मायादास, सदा उदास। कृष्णदास, बिंदास, मायादास, सदा उदास। तो उदास नहीं हमको होना है, बिंदास होना है। तो कृष्ण का दास ये हमारा वास्तविक रूप उस जगत में है, उसको यहां अनुभव करने का प्रयास कीजिए ना, जो वहां कर रहे थे। और वो जो भगवान ने आके हमको बोला भी कि आप ये सब वहां कर रहे थे, यहां क्यों नहीं कर रहे? क्यों डिले कर रहे? कल परसों नरसों फिर बच्चे का शादी होने दो, बच्चे के बच्चे होने दो, सब शादी होने दो, उसके बच्चे दस जनरेशन का हम सोचते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अटैच हो जाते हैं। एक उदाहरण है, सबको पता होगा, एक बड़ा ज्योतिषी था, एकदम एक्सपर्ट एक्सपर्ट ज्योतिषी, सारे सारे ज्योतिष शास्त्र का सब कुछ जानता, वेद शास्त्र संपन्न, ज्योतिष शास्त्र संपन्न। उसको चार लड़के थे, बच्चे। उसने अपना, जब उसका अंतिम समय है, बुढ़ा हो गया, एकदम वृद्धावस्था हो गई, तो अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा, देखो मैंने अपना पूरा भविष्य समझ लिया, सब कुछ जान लिया, मेरे कर्म धर्म संयोग के अनुसार और मेरे चार के अनुसार मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अगला जन्म सुअर का होगा, पिग, सुअर का होगा, और मैं अमुक अमुक जगह पे कांदिवली के महावीर नगर में रहूंगा, पपोल स्कूल के सामने। अब वहां पे मैं सुअर के रूप में रहूंगा, लेकिन वो जो जन्म है वो मेरा उस जन्म के बाद मेरे कुछ भोग ऐसे हैं, उस जन्म के पश्चात मैं ऊपर के लोगों में चला जाऊंगा। इसलिए मैं तुमको एक उपदेश देता हूं, बड़ा ध्यान से सुनो, सीरियसली करो उसको, बिल्कुल मतलब एक मिनट भी वेस्ट मत करो। जो मेरे हाथ पे जो निशान है वो मेरे उस समय सर पे रहेगा, काला निशान इधर रहेगा, उस योनि में भी रहेगा, सुवर के माथे पर रहेगा, इसलिए आप लोग मुझे पहचान पाओगे। अच्छा हाँ, तो काम ये करना है आपको, जैसा ही आप शुक्रवार के क्लास में आए भगवत गीता के, गन लेके आना, एक बंदूक लेके आना, और जैसे ही क्लास के बाहर निकले और आपने मुझे देख लिया और कंफर्म किया कि सर पे काला मार्क है, तुरंत गोलियां चला, क्योंकि जैसे ही मैं मर जाऊंगा तो अगला जन्म मेरा ऊपर के लोगों का है। बच्चे बड़े गंभीर हो गए, तो बोले ठीक है आपको मुक्ति देना हमारा कार्य है। तो उनका मृत्यु हो गया, कई कई दिन बीत गए, बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, कई महीने बीत गए, साल बीत गए, भगवत गीता का क्लास तो अपना 3 साल का है। फिर 3 साल बाद जब ये सत्संग के लिए आए, इनको ध्यान में था, अरे ऐसा ऐसा बोला, अब चलो देखते हैं। जैसे क्लास के बाहर निकले तो उन्होंने देखा सामने बराबर वो सुअर था, वो सुअर था, जैसे ही सुअर को देखा उसने बंदूक निकाला, गन पार की और पास में गया सुअर के, जैसे ही बंदूक ऐसे लगाया एकदम पास के चरण में सुअर चिल्लाने लग गया, मत मारो मत मारो मत मारो अभी मत मारो। अरे बोले तू नहीं 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 अभी मत मारो, कितना आनंद आ रहा है मुझे इस जीवन में। कितने सारे बच्चे हैं मुझे देखो, 25-30 बच्चे सब लगे हुए, कितना आराम से जीवन है, ठंडी हवा मिलती है बाहर, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सब मेरे श्रेणी के कितने सारे उधर बैठे हैं, अब क्यों मानो, अब मत मानो, मुझे भोगने दो, ये सब ऐश्वर्य भोगने दो, जो ऐश्वर्य प्राप्त है उसको भोगने दो। ऐसा ही हमारा कृष्णेर विवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण की सेवा करना है। सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे बड़ी सेवा है नाम सेवा, भगवान के नाम का नित्य स्मरण एवरी डे। लेकिन होता क्या है, सुअर की जैसी परिस्थिति कभी कभी हो जाती है। नहीं मुझे बंदूक लेके कोई भक्त जबरदस्ती बंदूक लेके, बंदूक मतलब अब हरिनाम का माला उसके सर पे टपक से मारता है, उसके ऊपर कवच रखा जाता है नसीम का बंदूक की जैसा, अरे अभी नहीं, आज 4 आज 2 वो तो आज कुछ भी नहीं, एकादशी को 64 नहीं, कभी एक कभी कुछ भी नहीं, कभी 64 कभी कुछ भी नहीं, कभी कैसा कभी कैसा, तो ये विक्षिप्त बात है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसलिए बंदूक लेके साथ में चलो। तो जब ये सबसे बड़ी सेवा है और वही हम भूल जाते हैं, और स्वरूप हमारा वही है, एक्चुअल आइडेंटिटी हमारी वही है, लेकिन सारे संसार में जो चल रहा है ना आजकल भौतिक जगत में, क्या है आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, बड़ा है ना, मेरी भी पहचान हो, दोनों नाम नाम वाम ले, ऐसा कुछ हो, पर आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा ऊपर के लोगों से चलते आ रहा है, उधर से ही अभी तक चल रहा है, उधर क्या आइडेंटिटी बनेगी हमारी? ये आइडेंटिटी क्राइसिस, हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं पहचान। तो इस प्रकार से सर्वगत है, ये सेवा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने का पूरा 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 लाभ है, 100% नॉट 99.9%, 100% लाभ उठाना चाहिए, 100% लाभ उठाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु इसके लिए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए अस्थि लता बीज। चैतन्य चैतन्य की कहा, ये सब करना है, सेवा करना है, सब कुछ है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु हमको मतलब फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि देखो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य। अरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कुछ कोई जन्म के भाग्य से मनुष्य बन गए हो, कौन भाग्यवान हो। अब मनुष्य बन गए हो तो गुरु और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते, गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त, तो इन दोनों की कृपा से अपने हृदय में भक्ति का बीज, भक्ति लता जो होती है प्लांट, भक्ति का रोप, उसका बीज इनकी कृपा से हृदय में भय वाले से बीज डाला गया, उसको सिंचन करना। वो सिंचन करने की जिम्मेदारी हमारी है, पोषण करने की, उस भक्ति के बीज को पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी। वो पोषण कैसे होगा? यदि हम गुरु को समर्पित होंगे, भगवान कृष्ण को समर्पित होंगे तो उसका पोषण, नहीं तो वो भक्ति लता जो है ऊपर बढ़ गई, अंकुर आते थे जल जाएगी, है ना। टेस्ट तो बहुत है हरिनाम में, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा तो बहुत लगता है, उसको बढ़ाना चाहिए ना, केवल अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है, वहीं बैठे वो अच्छा लगना कुछ काम का नहीं। जो अंकुर है, उस बीज ने अंकुर प्राप्त किया, अंकुर के रूप में बीज हो गया है, केवल अच्छा रहने पे ही सालों साल बीत गए तो वो जल जाएगा। उसका पोषण के लिए उसको सब जल की जल डालिए, उसको जल ही उसका खाद्य है और उसको बढ़ाइए। अब ये जो भक्ति लता बीज है, ये हृदय में जब बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ेगा, और बढ़ाइए, और अच्छी भक्ति कीजिए, और कृपा प्राप्त कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, भक्त सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, प्रसाद खाइए, नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, ये करते करते इस भक्ति लता बीज को बढ़ाइए, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये इतना ऊंचा होते जाएगा कि गोलोक धाम तक हो। इसके लिए करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसलिए हमारा विषय ये था सर्वगत कि जीव सर्वत्र है, सब जगह निर्जीव वस्तुओं में भी है, ब्रह्म रूप है। रूपा जी ने एक उदाहरण दिया था, एक बार आगरा में जुम्मा मस्जिद, कौन है जुम्मा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद जहाँ जामा जुम्मा है, जुम्मा मस्जिद है कुछ आगरा में,
दिल्ली में
तो जामा दिल्ली में, आगरा में जुम्मा मस्जिद है, जुम्मा यानी मस्जिद है। जुम्मा मस्जिद का जो गुम्बद है, उस गुम्बद का एक पत्थर था। रूपा जी उदाहरण देते हैं, कहीं तो उदाहरण दिए हैं, शायद तात्पर्य नहीं है। आगरा में आगरा के एक जुमा मस्जिद में उसके ऊपर गुमज में एक पत्थर रखा था, और उस एकदम गुमज टॉप में, गुमज मतलब टॉप, उसमें एक पत्थर था, और उस पत्थर में एक पीपल का झाड़ आया ऊपर और वो बढ़ गए। तो प्रभुपाद कहते कि वहां पे किसने बीज डाला, वहां पे कैसे आ गया? तो कहने का तात्पर्य कि वहां पे भी संचार हो सकता है, वहां पे भी जो मतलब सर्वत्र है, कहने का अर्थ है कि सर्वत्र है, और पहले अनेक प्रकार के शरीर भी सर्वत्र प्राप्त कर चुका है, सर्वत्र अब मनुष्य मिला है, उसी भक्ति बीज है, इसको बढ़ाने का हमारा जिम्मेदारी, नॉट ओनली सेवा जिम्मेदारी।
फिर दूसरा है
स्थान, अपरिवर्तनीय है स्थान, ठीक है, मतलब शरीर में ये नित्य आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनीय, शरीर के शरीर बढ़ता है लेकिन आत्मा, मतलब शरीर ने इतना आकार ले लिया तो आत्मा भी इतना आकार नहीं लेगा, वो नहीं रहेगा। इसे स्थानु अचल, अचल मतलब निष्क्रिय, अचल है, इसके ऊपर कोई ये चलायमान नहीं, इसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं था, निष्क्रिय निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय है मतलब इनके गुणों का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं था, तीनों गुणों का भी आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं है। और सनातन है, अनंत काल के है, सनातन धर्म है, अनंत सनातन मतलब क्या, सनातन इसमें शब्द है ना, सनातन
एक
सनातन मतलब अनंत काल से है, सनातन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सनातन धर्म है। ये क्या है, सनातन धर्म है, आत्मा क्या है, सनातन है, इस सनातन का धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ही धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सनातन एक ही धर्म है, बाकी सारे धर्म परित्यज्य, एक ही धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म सभी को सनातन धर्म कहते हैं सारे, तो ये हमारा धर्म है, ये धर्म वो धर्म है, तो परिवार का धर्म है, ये उधर निर्वाह वो भी धर्म, सब धर्म धर्म, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये सनातन धर्म है और आत्मा सनातन है, मतलब ये है कि जो आत्मा है सनातन, अनेक अनादि काल से भगवान को समर्पित है, नहीं भगवान के सिवा नहीं, इसका अर्थ ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम।